نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام کی چار بنیادیں، اس میں سے ہم عقائد کا موضوع کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواقض الایمان کیا ہے، یعنی کیا کیا عمل ہیں یا سوچیں یا انسان کے قول کہ جس کی وجہ سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے. آسان سی بات بولی، ایمان ٹوٹ جاتا ہے یعنی ایمان میں خلل پڑتا ہے. اور یہ لفظ ٹوٹنے پہ غور کرتے رہے، جب تک یہ ٹاپک پورا نہ ہو جائے تب تک اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے. تو ہم نے ابھی تک اس میں آٹھ مختلف چیزیں دیکھی ہیں. سب سے پہلی چیز، آپ بھی دہرائیں میرے ساتھ، غیر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ. بولیں، اونچی آواز سے بولیں. دوبارہ میں بولتی ہوں اور آپ اس شعور سے بولیں کہ کہیں میرا ایمان اس حد تک تو نہیں گر رہا یا ٹوٹ رہا کہ میں اپنے آپ کو پیچھے کرتی جا رہی ہوں. دوسری چیز، مطلقاً غیر اللہ کے لیے عمل کرنا. خود سے پوچھے کیا میرے عمل کسی اور کے لیے تو نہیں، دکھاوا، شہرت، ریاکاری، تعریف، دوسروں سے داد پانا، کسی اور کا اعتماد لینا، یہ سب کچھ تو نہیں ہے. ہر سبق سے پہلے نظر ڈالا کریں، اس لسٹ کو دہراتے رہیں دہراتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے ہر وقت. تیسری چیز جس پہ ہم نے قدرے ڈیٹیل سے بات کی تھی، غیر اللہ کی اطاعت، کہ ہم اللہ کے ماسوا کس کس کی بات مانتے ہیں. آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں، اب کس کی پوچھتی ہوں، اب کون ہے میرا غیر اللہ، اب کس سے ڈرتی ہوں، کس کا خوف ہے. اور آج کے بعد اسی پہ غور و فکر کرتے رہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اب آج کے بعد اللہ کو ناراض کر کے کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اور میرا ایمان ہے کہ کوئی خوش ہوگا بھی نہیں. ٹھیک ہے، پھر اگلی چیز، غیر اللہ کو حاکمیت یا قانون سازی کا حق دے دینا، یعنی اسلام کے نام پر کوئی جگہ ہو لیکن وہاں کے قانون اسلام سے کانٹراڈکٹ کرتے ہوں. پھر اسلام کا ظاہر و باطن الگ الگ ماننا، یعنی کیا کہنا کہ بس جی ہم ایک وہ اسلام جانتے ہیں جو نماز روزہ کہتا ہے، اور جو اس کے اندر احکامات ہیں یا ان عبادات کے جو اثرات ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی واقعی ادخلوا فی السلم کافہ کی کیفیت کا آ جانا. پھر اسی طرح اصل توحید سے گھبراہٹ، کہ جب بھی توحید کی بات ہوتی ہے تو ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھبرانے لگتے ہیں کہ یہ تو صرف اللہ ہی کی باتیں کرتے ہیں کسی اور کی نہیں. تو یہ آٹھ چیزیں تھیں. آج ہم پیج 42 پر نواں ٹاپک دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محرومی. یاد رکھیے گا، ایک بندے کی زندگی کی معراج یہ ہے کہ اس کو اپنے رب سے معرفت مل جائے. معرفت کیا ہوتی ہے؟ عرفہ، عرفان، تعارف، معروف، عرف، یہ سارے لفظ اکٹھے کریں تو کیا بنا؟ اللہ سے جان پہچان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی دوستی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان اپنے آپ کو اس طرح جوڑے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مرضی کا بنانے کی کوشش کرے. تو لہٰذا جب بندہ اللہ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے نا، تو اس کے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے، ایمان ٹوٹ جاتا ہے، ایمان میں دراڑ پڑ جاتی ہے. ایمان کے ٹوٹنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. انسان دعوی ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان سے خارج ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بالکل ہی کورا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات، افعال اور حقوق میں سے کسی کا انکار کرتا ہو. وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کوئی نقص یا خرابی محمول کریں، محمول کیا ہوتا ہے؟ حمل سے پکڑنا، تو محمول جس نے پکڑی ہوئی ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کی ذات نے نقص اور خرابیوں کو تھاما ہوا ہے، اور اس بات کی معرفت نہ رکھتے ہوں کہ کمال اصلی صرف اسی کو زیبا ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اسی کے فعل کا نتیجہ ہے، وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے عاری ہے. پہلے تو اتنی بات کو جذب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے مجھے. سیدھا سا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسماء الحسنیٰ سامنے رکھ لیں، ایک ایک نام پہ غور کرتے جائیں. ہو اللہ الخالق المالک अर्राज़िक़ अल्वहाब अर्रहमान अर्रहीम, हर सिफत पे एक एक मिनट सोचते रहे, आपके 99 मिनट्स तो इसी में गुजर जाएंगे। सिर्फ एक मिनट अगर आप एक नाम पे गौर करें ना, तो 99 मिनट्स आपको पता है कितने होते हैं? 1.5 घंटे से ज़्यादा। और ये तो बहुत थोड़ी चीज़ पे हमने गौर किया। अल्लाह ताला तो सूरत अलकाहफ के एंड पे क्या कहते हैं कि तुम अगर अल्लाह की बातें लिखने लग जाओ और तुम उसके लिए कोशिशें कर लो, तुम पूरे नहीं उतर सकते। सूरत लुकमान में क्या कहा उसकी आखिरी आयात में, सारी दुनिया के लकड़ियां कलम बन जाएं और दरियाओं और समंदरों की स्याही बन जाए और तुम रब की बातें लिखने चाहो तो नहीं लिख सकते। और ये बात कहते हुए एकदम मेरा दिल भी धड़का है कि सिर्फ एक मिनट कितना को होता है? शायद ये बात शुरू किए हुए एक मिनट से ज़्यादा हो गया। सिर्फ एक मिनट आप अल्लाह की एक सिफत पे गौर करें तो आपको तकरीबन 1.5-2 घंटे चाहिए। ज़रा सोचिए वो ज़ात क्या है। और असल बात ही यह है कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, इन्ना अल्लाह लकवीयुन अजीज, सूरत अल हज आयत 74, कि इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही ना पहचानी जैसा कि इसके पहचानने का हक है। वाकया यह है कि कुव्वत और इज्जत वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। और आप लिख लें जहां अमल में कमी है, अल्लाह की कदर में कमी है, जहां आप दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेस हैं, स्ट्रेस्ड हैं, अपसेट हैं, मायूस हैं, अल्लाह की कदर में कमी है। क्योंकि आप अल्लाह को बड़ा मजबूर समझते हैं ऐसे वक्तों में। और जहां खुशियों में आप बहकते हैं, खुशियां देकर, सेहत पाकर, नेमतों को लेकर, औलाद को पाकर, दौलत को लेकर, घरों को लेकर, हर दिन अल्लाह की नेमतों को पाकर अगर आप उसकी कदर नहीं कर रहे और उन नेमतों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ना दे तो हम बेगर्स बन जाते हैं, फकीर बन जाते हैं। तहज्जुदों में उठ उठ के दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ये रिश्ते दे दे, अल्लाह बच्चों के रिश्ते करा दे, अल्लाह मियाँ की जॉब लग जाए, अल्लाह घर अपना हो जाए। जूं ही रब वो देता है तो हम कहते हैं अब उसको तो कर ही लेंगे राजी, पहले बंदों को खुश कर लें। ये एक इंसान का अल्लाह की कदर ना करना है। आज कितने लोग हैं जो सच बताएं कि अल्लाह की मार्फत पाते हैं? अपने आप को पूछिए, अगर आपको अल्लाह की कुदरत का यकीन नहीं है ना, आप एक चीज़ को नामुमकिन समझते हैं जिसमें अल्लाह की रज़ा मिलती है, जिसमें अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा, जिसमें अल्लाह ताला आपके लिए खैर के दरवाजे खोलेगा, तो मान लीजिए आपने अल्लाह ताला को अंडर एस्टिमेट किया। अंडर एस्टिमेट समझते हैं, असल से कम अंदाज़ा लगाना। कोई पूछता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवानी हो तो कितने पैसे लगेंगे, और कोई कहता है बस 1,00,000 करोन में बन जाएगी, ये अंडर एस्टिमेशन है। और कोई कहता है कि 50 मिलियन या 50 मिलियन करोन लगेगा तो ये ओवर एस्टिमेशन है। अल्लाह की ज़ात को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया लोगों ने। अल्लाह के बारे में कोई ओवर एस्टिमेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। इंसान की सोच में भी अल्लाह की कुदरत नहीं आती। गैब से रास्ते बनाने वाला, दरियाओं को फाड़ने वाला, जलती आग को बुझाने वाला, छोटी छोटी चिड़ियाओं से अपने घर की हिफाजत करवाने वाला, बड़े बड़े हाथियों को नाक चने चबवाने वाला, कारून को जमीन बोस करने वाला, फिरौन को समंदर की लहरों में डुबोने वाला, क्या मैंने उस रब के लिए अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मामलात को मुश्किल समझा? तो वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, और मानिए कमी इसमें ही है। ये जो हम दीन के रास्ते की कुर्बानियां नहीं दे पाते ना, और स्टेबिलिटी नहीं आती, और हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है कुछ दिन के बाद, या छोटी सी एक छाल बराबर मजबूरी या मुश्किल हमारे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है, मान लीजिए माँ कदरुल्लाह हक्का कदरी। आपको अपनी औलाद की कदर ज्यादा होती है अल्लाह की कदर से, सच कह रही हूं मैं। हमें अपने शौहरों की कदर शायद अल्लाह की कदर से बहुत ही ज्यादा है। हमें एक छोटे छोटे रिश्तेदार की कदर अल्लाह की कदर से बहुत ज्यादा है। अल्लाह को हमने क्या सोचा हुआ, वो तो है ही अपना। हम ये तो नहीं कहते कि अल्लाह नहीं है। याद रखिए कि मुसलमान के पास शैतान कभी ये नहीं कह के आता कि अल्लाह की केयर छोड़ दो, अल्लाह को नाराज करो, अल्लाह को परेशान करो, नहीं। क्या कहता है, अरे वो तो अपना है, वो उसको तो मैं मना ही लूंगी, उसके लिए रात को 2 नफिल ज्यादा पढ़ लूंगी, थोड़ा सा सदका कर दूंगी और ये सारे काम निपटा लूं, फिर बस शुक्राने में उमरा कराऊंगी जाके, या कराऊंगा जाके। हम अल्लाह ताला का वो मामला करते हैं अमूमन जैसे औलाद अपने माँ बाप का करती है, सबकी खुशी का ख्याल करेगी माँ बाप के, ये तो माँ है ना, मामा ने तो माँ नहीं जाना और बाबा ने क्या कह लेना है, उनको भी पता है कि ये मजबूर है अपने दिल के हाथों, कुछ भी कर लिया मानेंगे। यकीन कीजिए कि बहुत सारे लोग अल्लाह ताला के साथ ये वाला लाड रखते हैं जो उसको बिल्कुल ज़ेबा नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर माँ की मोहब्बत से अपनी मोहब्बत को जोड़ा है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि अल्लाह मजबूर है माँ की तरह कुव्वत और इज्जत महसूस करे। आपको यहां बैठकर अपना दिल खुलता हुआ महसूस होना चाहिए, मेरा है ना वो, मेरा रब, मैं उसे प्यार करती हूं, मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूं। सच बताए कि अगर लोगों को अल्लाह की कदर होती तो आज दुनिया में अल्लाह वाली जगह और अल्लाह के नाम के काम ऐसे होते जैसे अब होते हैं, आज मस्जिदें ऐसे वीरान होती। लोगों को अल्लाह की कदर नहीं है, हमें अपने आप को पूछना है, दिन में कितनी बार अल्लाह की नाकदरी करती हूँ, दुनिया की चीज़ों को सराहते हैं, कभी आपने आसमान को सराहा या शऊर के साथ कि ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, ये चांद देखो, ये सूरज देखो, ये सितारे देखो, चले ये तो आप कहेंगे कायनात की निशानियाँ, ये तो हम सारे ही जानते हैं, कभी आपने अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को, कामयाबियों को अल्लाह के नाम किया, कभी आपने अपनी मुश्किलात को अल्लाह के नाम किया। मुझे तो ऐसे लगता है कि एक पतली सी छिलके से भी हल्की इंसान की अपनी ज़ात रह जाती है जब उसको अल्लाह की कुदरत का एहसास होता है। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़्ज़न, ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी इन लोगों ने इसके बंदों में से बाज़ को इसका जुज़ बना डाला, नऊज़ बिल्लाह। बास को इसका जुज कैसे बनाया, कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, जिन्नात से अल्लाह ताला का कोई नसब नाता है, हालांकि बात क्या कि इन्नल इंसान लकफूर मुबीन, हकीकत यह कि इंसान खुला एहसान फरामोश है। मेरा तो दिल करे इसका नाम ही रख दें क्या इंसान तो कितना एहसान फरामोश है, चंद सेकंड तो जी नहीं सकता अगर अल्लाह तेरा साथ छोड़ दे। और फिर जिन्होंने सरीहन शिर्क किया उनका जिक्र सूरत मायदा है 73, लकत कफर अल्लज़ीन कालू इन अल्लाह सालिसु सलासा, इन लोगों ने कुफर किया है। देखिए मैं नहीं कह रही, हमें कुछ नहीं कहने की जरूरत, कुरान उन लोगों को कुफर पे कह रहा है जिन्होंने कहा कि अल्लाह 3 में से 1 है, ट्रिनिटी, तसलीस के अकीदे को यहां कुफर कहा गया। अल्लाह ताला की मार्फत का ना होना ही शिर्क बिल्लाह का असल सबब है। इस जुमले को आप बड़ा बड़ा करके लिख लें अपने पास, सीधी सी बात है, बच्चे को यकीन हो ना कि बाप नहीं दे देने हैं सारे पैसे तो वो किसी और की तरफ जाएगा, कोई अपने बाप को छोड़कर बाप के दोस्त के पास पैसे मांगने चला जाए तो आप कहेंगे ना कि इसको अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, इसको बाप की ताकत का एहसास नहीं, वो कहते नहीं मेरे अब्बू के पास इतने पैसे ही नहीं है, अगर हैं भी ना तो वो मुझे तो देंगे ही नहीं, वो तो दे ही नहीं सकते। और नतीजा क्या निकलता है कि आप अपने बाप को छोड़कर दूसरों से मांगकर बाप को ही जलील कराते हैं। तो आप जरा सोचिए कोई शिर कर सकता है क्या दुनिया में, कोई दाता, कोई पीर, आप देखिए नाम लें जो लोग लेते हैं अमूमन, कोई दस्तगीर, ख्वाजा गुलाम नवाज, जो भी जिसको भी कहे, हम नहीं कह रहे इस वक्त शिर्क है या गलत है, कुछ नहीं, जो लोग बोलते हैं, लोग जिनके बारे में कहते हैं जी ये तो करनी वाले, सच बताएं दुनिया की बड़ी से बड़ी दरगाह, बड़े से बड़े बुजुर्ग, बड़े से बड़े पीर का नाम लिखिए और मुकाबले में तकाबुल कीजिए कि क्या ये अल्लाह से ज्यादा ताकतवर है, कोई तकाबुल है दुनिया के पीर के, पीर के पर को भी अगर आप नीचे ले आए तो अल्लाह के आगे तो उसकी भी कोई औकात नहीं है। तो शिर्क होता ही तब है जब अल्लाह की कुदरत का एहसास नहीं। कोई बेटा मांगने जाता है बुजुर्ग के पास तो मान लिया ना कि अल्लाह ताला की इस कुदरत पे यकीन नहीं, वो तो खुद कहते वाहबू, किसी को वो बेटे देता है, किसी को बेटियां देता है, अल्लाह ताला के अल खालिक होने का यकीन नहीं है। इसलिए कि इंसान जब अल्लाह ताला के असमो सिफात और इसके कमालो अफाल और हुकूक से ना वाकिफ होता है तो अल्लाह ताला के साथ वो बातें मंसूब कर देता है जो इसकी ज़ात के लायक नहीं होती, या अल्लाह ताला को मखलूक में से किसी के साथ तशबीह देता है यानी रिजेम्बलेंस करवाता है अल्लाह ताला की, या मखलूक यानी क्रिएशन में से किसी को अल्लाह का जुज ठहरा देता है, जुज के पार्ट ऑफ, जैसे वो कहते हैं नूरुम मिन नूर अल्लाह, नौस बिल अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर का एक हिस्सा थे, और गैर अल्लाह को यूं पुकारने लगता है गोया कि इसे नफा और जरर का मालिक समझने लगता है। अल्लाह ताला सूरत अर्राद आयत 14 में फरमाते हैं लहू दावतुल हक, इसी को पुकारना बरहक है। इसको बोलें जरा आप भी, लहू दावतुल हक, इसी को पुकारना बरहक है, यानी हक सिर्फ अल्लाह का है कि उसको पुकारा जाए। याद रखिए अल्लाह के माँ सिवा को पुकारना अल्लाह की नाकदरी करना, बातिल है ये। والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء, रही वो दूसरी हस्तियां जिन्हें इसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो इनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। आज तक कभी किसी कब्र में से जवाब आया, किसी कब्र के पास से जवाब आया? आप देखिए कुर्स मना ले, कोई वहां जाके चिरागां कर दे, चढ़ावे चढ़ा दे, अर्क गुलाब मनों के हिसाब से वहां जाके उंडेल दे, सारा शहर जमा होके आ जाए, पुकारे पुकारे पुकारे, कभी कब्र के अंदर से जवाब आए? और अगर बिलफर्ज किसी दिन कब्र में से जवाब आ जाए तो आप बताइए कि क्या लोग उनको कब्र में ही रहने देंगे? सबसे पहले तो उनको फिक्र लगेगी इनको निकालो बाहर, ये तो अंदर जिंदा है, और कुछ कर सकते तो वो अंदर से कम अज कम कब्र की मट्टी झाड़ के तो आ जाते। मैं सोचती हूं कि जब आपका अल्लाह से ताल्लुक कमजोर होता है ना, यकीन करें आप मायूसियों के अंधेरों में गिर जाते हैं। फिर दूसरे का ख्याल आता है, ख्याल किसका आता है, कब आता है? बस आप अपने शौहर से पैसे मांगती हैं, वो आपकी जरूरत पूरी कर देते हैं, किसी और का ख्याल आता है? आप कहते हैं जरूरत ही कोई नहीं, वो जब दे जो रहे हैं। आप अपने मुतालबे बढ़ा लें, उनकी पहुंच से आगे बढ़ जाए, फिर घर में झगड़ा हो, फिर जब लगे कि जो मैं मांगती हूँ वो नहीं देता मियाँ, या शौहर वो नहीं देते जो मैं मांगती हूँ, तो क्या करें? फिर आप कहते अच्छा चलो अब किसी और से भी कुछ मांगती हूँ, कुछ थोड़ा सा कोई मेरा महीना लगा दे, दरवाज़ा ही खुल जाएगा। जिसने ये मान लिया कि मेरी हर ज़रूरत मेरा मालिक पूरी करता है, देखिए अल्लाह ताला तो आपको मुझे तब भी देता था जब हम माँ के पेट में थे, ना या अल्लाह कह सकते थे, ना या रहमान कह सकते थे, या वदूद नहीं कह सकते थे, कभी मांगा हमने? माँ के पेट से बच्चे को खुराक मिल जाती है, उस वक्त तो नाम भी नहीं लेना आता, पैदा हुए अल्लाह ने जिस्म में खुराक का इंतजाम कर दिया, चार माह के होने पर आए दूध से भूख ना ख़त्म हुई, दान देने शुरू कर दिए, हल्की हल्की चीजें खाते खाते आज तक अपनी जिंदगी का कोई एक दिन याद करें कि आपको किसी चीज की जरूरत थी और अल्लाह ने ना दी। हवा चाहिए सांस लेने के लिए, अल्लाह हवा दे देता है, भूख लगती है खाना मिल जाता है, प्यास लगती है पानी मिल जाता है, जिस्म से गंदगी को निकालना वॉशरूम मिल जाता है, गंदा महसूस करते हैं खुद को पानी मिल जाता है, कपड़े गंदे होते हैं दूसरे कपड़े मिल जाते हैं, आपकी कौन सी आज तक जरूरत पूरी नहीं हुई? फिर उसको छोड़कर दूसरों के पास जाना। अल्लाह सुब्हान तआला एक मिसाल दे देते हैं इसके बारे में, इल्ला कबासिति कफ्फैहि इलल माई लियब्लुगा फाहु वमा हुवा बिबालिगिही वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी दलाल। पीछे भी आयत गुजरी थी, यानी किसी और को पुकारना अल्लाह के माँ सिवा को कैसा है, जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर इससे दरख्वास्त करे कि मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी इस तक पहुंचने वाला नहीं। बस इसी तरह काफिरों की दुआएं भी कुछ नहीं हैं मगर एक तीरे बेहदफ। तीरे बेहदफ क्या होता है? लॉस्ट एरो, ऐसा तीर जो निशाने पे लगने के बजाय इधर उधर गिर जाए, और आप देखते हैं कैसी चीजें जमीन पर रुल रही होती हैं। तो याद रखिए इस सारी बात को जज्ब करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप इस किताब के सफ़ों को जज्ब करें, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस जुमले को फिट कर लें। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है? आप बैठ के ना इस पर एक्टिविटी करें, मैं फिर आपको कहूंगी वो जुमले कि अगर आप खुद नहीं कुछ लेंगे तो आपको इस किताब के पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। ये टॉपिक आपको बहुत कुछ नहीं दे सकेगा अगर आपने अपनी जिंदगी से इसको रिलेट नहीं किया। खुद से पूछे, कब जिंदगी में मुझे अल्लाह की शिद्दत से जरूरत महसूस हुई? ये कब मुझे महसूस हुआ कि मैं टूट गई हूं? कब मुझे किसी सहारे की जरूरत पड़ी? पर इस जाती जिंदगी में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस कराता है कि वो कहते हैं ना कि जिन पत्तों पे तकिया था वही हवा देने लगे। सहारे आप कह लीजिए, एक मर्द के सहारे एक औरत अपने माँ बाप का घर छोड़ देती है। क्या होता है कि ये मर्द मेरा मुंतजर है, ये मेरी जिंदगी को टेक केयर करेगा। एक वक्त आता है कभी कि वो आपकी टेक केयर नहीं करता। मिसाल है, माँ बाप भी कोई नहीं है। ये कौन सा वक्त था? ये रब की मार्फत का वक्त था, जब दुखों और तकलीफों और मुसीबतों के बाद आपको रब मिल जाए ना, अल्लाह की कसम उससे ज्यादा मुबारक के लायक ही नहीं आप। वो मुसीबत, वो दुख, वो तकलीफ जो आपको आपके रब की मार्फत दे दे, उस खुशी और उस नेमत से अच्छी है जो आपको रब से दूर कर दे। और कुछ लोग वाकई फिर ऐसे दिनों में अल्लाह के करीब आ जाते हैं। आप सोचिए, अपनी जिंदगी का कोई लम्हा किसी ने आपको ठुकरा दिया, कोई आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा, सब सहारे छूट गए, इतने में किसने कहा कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें थाम लूंगा। इसी तरह अल्लाह ताला बंदे को कभी कभी किसी बीमारी में डाल देता है। कभी कभी तो जानलेवा बीमारियां जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इमेजिन करें जरा, कोई ऐसा वक्त जब आपको कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि जिसको डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, किसने आपको सेहत दी? उन बीमारी के दिनों में लोगों का रवैया आपके साथ क्या था? तरस तो खा सकते हैं लोग, वो मोहब्बत और लाड और चाव नहीं दिखाते लोग जो खुशियों में दिखाते हैं। ये आप माने ना माने, अपनी सगी औलाद को अगर आप अच्छी तरह ना बोलें पूछे तो वो भी दूसरी तीसरी बार आपकी तरफ आना पसंद नहीं करेगी। ये दुनिया वाले सिर्फ खुशियों के सौदागर होते हैं। जब आप उनकी खातिरें करें, जब आप उनके लाड देखें, जब उनको भी पता है कि जाएंगे तो हमारे आगे बड़े बड़े दस्तरखान बिछेंगे, और अगर पता चले कि साथ खाने पका कर ले जाने पड़ेंगे, कि घर वाले तो पता नहीं खुद भी पका के खा चुके हैं कि नहीं, तो फिर कहते हैं फासले बहुत हैं, मजबूरियां बहुत हैं। तो कभी मांगिए नहीं अल्लाह से कोई आजमाइश, लेकिन अगर आ जाए तो आप उसको अपने लिए नेमत बना लें। अच्छा, इसी तरह आप कोई चीज मिल गई, आप नेमत मांगते हैं ना, केली नेमत ना मांगे, आप उस नेमत के साथ अल्लाह का कुर्ब मांगे। औलाद नहीं है आपकी, औलाद औलाद, बच्चा 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 बच्चा, चलिए बच्चा हो गया, आप उस खिलौने को पाकर रब को ही भूल गए। कभी हम अपने नामे अमाल को देखें ना, तो मैं कहती हूं कि हमें अपनी अकलमंदी और अपनी बेवकूफी का अंदाजा हो जाए, या हमें अपनी दौलत का असल अंदाजा हो जाए कि हमारे नामे अमाल में हर हफ्ते कितना डिपॉजिट होता था और अब क्या खाली स्टेटमेंट्स जाती होंगी, सारा दिन खप खपा के बाद। कोई नेमत जो आपको अल्लाह से दूर करती है, मान लीजिए उसकी आजमाइश आप पे जरूर आएगी। ये अल्लाह की सुन्नत है। नेमतों में पढ़कर रब को भूलने वाले अपनी नेमतों को मशकूक कर लेते हैं और फिर हम रोते हैं, हमने कौन सी कसर छोड़ी, हमने तो इनका बड़ा ख्याल रखा। तो कभी ये वक्त ना आ जाए कि अल्लाह हम पे, हमारे साथ बदला लेने पे आ जाए। मुझे तो समझ आती है, सीधे सर नीचे छोड़कर ना अपना, जैसे एक बड़ा सीधा सा जेंटलमैन और बड़ा मतलब महज़ब शख्स बन के जिंदगी की इस शाहरा से गुजर जाए। खुशियां हैं कि गम, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं, वो मुझे राहें दिखाएगा। ताल्लुक बिल्ला ना छोड़ें। देखिए, ये आपकी वो डोरी है जो आपको शराब के नशे से भी निकाल के ले आएगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ना करे कभी फंस गए। ये वो डोरी है जो आपको दुनिया की दलदल से भी एक दिन निकाल लेगी, अगर ये डोरी सलामत रही। वरना जिस दिन ये डोरी टूटती है ना, तो दुनिया तो एक ऐसा समंदर है कि जो एक दफा इसकी तरफ गया फिर वो वापस कम ही आया। कभी आप एक छोटी सी दुनिया की चीज लेने जाते हैं और उसके बाद आप देख लीजिए, आपको याद ही नहीं रहता कि हम चले कहाँ से थे। दुनिया जितनी मिलेगी आपको थोड़ी लगेगी। आज आप बड़े खुश हैं कि बहुत दुनिया मिल रही है, बहुत मिल गया। अल्लाह की कसम, जिनके पास दुनिया दरवाजे तक पड़ी है ना, उनमें से अक्सर लोग रात को दवाइयाँ खा के सोते हैं। मुझे एक ट्रिप में इत्तफाक हुआ, मेरे पास पिक्चर्स हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यानी मेरा ख्याल है कि ये हमारा पूरा, ये जो मेन क्लासरूम है ना, वो पीछे का हिस्सा छोड़ के यहाँ से लेके ये हिस्सा, अगर सिर्फ इतना बाथरूम है उनका, और अंदर जाके बंदे को भूल ही जाता है कि करने के आया था। यकीन करें, अंदर काउचेस तक लगी हुई हैं, सोफे रखे हुए हैं बाथरूम के अंदर। मैंने कहा इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आई कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये नहाने का जगह, ये फलानी, और ढूंढना पड़ता है कि फ्लश किधर है। वल्लाह ही मैं झूठ नहीं बोल रही, फर्स्ट टाइम जाएं तो आप गुम हो जाएं, कि जैसे आप एक बहुत बड़े पार्लर का कोई तस्वुर में लाइए ना, कि अंदर शोकेस है, इधर चीज़ें, वो चीज़ें, इधर डेकोरेशन, वो कोने में इधर ये, और एक साइड पे छोटा सा फ्लश लगा हुआ। अब बताएं कि ऐसी जगह से अंदर जाके निकलने को दिल किसका करेगा। मैं नहीं कहती कि किसी ने गलत किया या अच्छा किया, लेकिन ये दुनिया इस तरह का एक हमारे लिए डिस्प्ले बन जाती है कि हमें असल मकसद ही भूल जाता है। लेकिन जिनका वो है, मैं उनको बहुत करीब से जानती हूँ, कभी आप उनके साथ बैठें तो वो आपको अपनी उंगलियों पे अपनी बीमारियां गिनाएंगी और अपने डिप्रेशन गिनाएंगी, और डिप्रेशन वाली गोलियां खाकर भी अब नींद नहीं आती ये बताएंगी। लोग ऐसी जगहों में हा हू करके आते हैं, मैं और अल्लाह को कहती हूँ, अल्लाह तेरे वादे सच्चे हैं, कि ये दुनिया की दौलत दुनिया में खुशी नहीं देती, ये सिर्फ एक झूठी तसल्ली, एक तिफल तसल्ली है। ईमान की दौलत छोड़कर आप दुनिया की दौलत लें, आप इल्म की दौलत छोड़कर दुनिया के इल्म के पीछे भागें, तुफ है। मैं कहती हूँ जिसने रब का रास्ता छोड़कर दुनिया का रास्ता ढूंढा ना, उसको दुनिया भी मिल गई ना, तो उसको वो खुशी नहीं मिलनी जो रब के रास्ते में आपको दुनिया भी मिल जाती और खुशी भी मिल जाती। पूरी दुनिया देखिए आज जिस डगर पे चली हुई है ना, मान लीजिए कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, सुबह होती है और हम घर से वो चीज़ पाने के लिए निकलते हैं जो अल्लाह दिन में 5 बार हमें ऑफर करता है, हय अल सलाह, हय अल फलाह। ये कामयाबी की तरफ आओ क्या दावत है, सक्सेस की तरफ आओ, वो तो आपको अल्लाह ने वैसे ही दे देनी थी। आप नमाजें छोड़कर अल्लाह को खुश करने गए, जाइए फिर करके आइए, देखिए आप दुनिया लेके तो आए, तो अपने आप को टटोले। मैं भी टटोलू, मैं तो ये असल में सब कुछ खुद को सुनाती हूँ, बहाने से आप लोग भी सुन लेते हैं। आज के बाद आपकी जिंदगी का नक्शा बदलना चाहिए। आप इसको एक छोटी सी बात से समझे, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक नबी सल्लम की मार्फत है, उसके ऊपर तो मुझे लगता है कि हमें रोना पड़ेगा कि आज हमारी जिंदगियां क्या हैं और हमारे प्यारे नबी की जिंदगी क्या थी। लेकिन आप देखिए कि एक इंसान जब अल्लाह की मोहब्बत को और अल्लाह सुभाना ताला की वसतों को पा जाता है, फिर वो नाकाबले तस्खीर हो जाता है। ना वो डरता है, ना वो बिकता है, ना वो सुस्त पड़ता है, ना वो अपनी जिंदगी को जाया करता है। किसी बड़ी सी कंपनी का तसव्वुर लाइए, तसव्वुर में जरा लाइए कोई बहुत बड़ा नाम जो आपके दिमाग में हो। बहुत सारे नाम है, चलिए आज के दौर में हम एप्पल कंपनी का नाम ले लेते हैं, आज के दौर का एक नया नाम है। वैसे तो गाड़ियों की भी बड़ी कंपनियां और माइक्रोसॉफ्ट और कंप्यूटर्स और फुला फुला, कोई ऐसा नाम जिसको ब्रांड कहा जाता है। किसी को वहां जॉब मिल जाए, आपके शौहर को वहां जॉब मिल गई, और जॉब भी प्रेस्टीजियस और मेहनत थोड़ी और मराद से ज्यादा, सबसे ज्यादा धड़का किस बात का होगा कि ये छीन ना जाए, कभी ये इनको ले ऑफ ना कर दें, और दूसरों को जॉब बाद में बताएंगे, पहले लफ्ज एप्पल लगाएंगे। शान बड़ी है ना, सच्ची बात है, इंसान है ना। अच्छी लॉन पहनी हो तो लॉन का नाम लोग पहले लेते हैं, कपड़े का नाम बाद में लेते होंगे। ये वाली लॉन है, ये ब्रांड है, ये जोड़ा है, मैं तो यही लोगों के मुंह से सुनती रही हूँ, ये लॉन है, ये कपड़े, वो कपड़े, ये पहने, भाई ये बताओ तन ढक रहा कि नहीं ढक रहा। जिस चीज की आपको वैल्यू होती है ना, सबसे ज्यादा आपको अंदेशा होता है कि ये मुझसे छीन ना जाए। फिर आप उस जॉब को छोड़कर, नामुमकिन है कि आप एप्पल को छोड़कर आप कह लीजिए कि छोटी सी किसी दुकान पे आप कोई ग्रोसरी बेचने लग जाए, आप कहेंगे वो जो रोब था वो तो नहीं रहा ना। तो अगर मुझे अल्लाह की मार्फत है ना, अगर मुझे अल्लाह सुबहाना ताला से प्यार है, तो अल्लाह के रास्ते अल्लाह के काम से भी मुझे उतना ही प्यार होना चाहिए। मुझे खौफ रहे हर वक्त कि अल्लाह यहाँ से पटक के मुझे नीचे ना मारे कि तुम कहाँ से दूसरों को इतनी बातें सुनाने लग गई, पीछे पड़ो, तुम इस काबिल नहीं हो। ये तो मैंने एक ट्रायल दिया था तुम्हें, तुम समझिए तुम्हारी असल। और याद रखिए, बाज दफा अल्लाह सिर्फ ट्रायल हमें दे रहा होता है, हम इस काबिल होते कोई नहीं है। जस्ट इट्स माई ट्रायल कि आई कैन टीच अल्लाह बुक। मैं इस ट्रायल पे ही अकड़ गई, भूल गई, देखा मैं आ गई ना इधर, और मेरी औकात थी कोई नहीं। अल्लाह ताला बस वो थोड़े दिन की इज्जत दे देता है, बाद में कहता है चलो जाओ भाई शाबाश। वो ऐसे नहीं कहता कि आपको बुरा लगे, वो बहाने से इधर से उठा के आपको जाके किसी जूते बेचने की दुकान पे लगाएगा कि आप बैठ के जूते बनाए। आप इस काबिल नहीं, ये ट्रायल था, आप सॉरी यू आर नॉट फिट। तो जितना बंदे को अल्लाह की मार्फत होगी ना, उतना उसको खौफ आएगा अपने हर कॉल फेल एक्शन से कि मैं अल्लाह की इस गुलामी से और अल्लाह ताला की इस के दीन की इस खिदमत से पीछे ना हट जाऊं। जहां लाओबालीपन आएगा, जहां आपका एटीट्यूड 99 से नीचे आ जाएगा, यानी 100 से नीचे तो 99 है ना, आप 99 से जैसे नीचे आ जाएंगे आप रिस्क पे हैं। ये तो 110% अर्ज हो, तड़प हो, दोनों हाथों से कुछ पकड़ा हो कि अल्लाह ताला मुझे आपका रास्ता नहीं छोड़ना। मैं सोचती हूँ अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ, हाफिज़े कुरान बन रहे थे बच्चे, एकदम छोड़ दिया, कुरान पढ़ा सब कुछ पढ़ा, अब नमाज भी नहीं पढ़ते। तब्दीलियां आई जिंदगी में, छोटी छोटी बातें की, दाढ़ी रख ली, लड़के हैं औरतें हैं तो पर्दा कर लिया, फिर एकदम ऐसे छपक्की सी आती है, किधर गया सब कुछ। वो एक वनीर था, वो सिर्फ एक कोटिंग थी, वो एक हल्की सी क्रैकिंग की हुई। जैसे मेरे जेब में इस वक्त वो एक बड़ी मारूफ सी चौकबार आ रही है जो हम बचपन में खाते थे, ऊपर से वो देखने में पूरी ब्राउन लगती थी ना, एक बाइट लेते थे तो अंदर से येलो निकल आता है, और आप देखते हैं कि वो एक बाइट लेते लेते उसके अंदर इतने क्रैक हो जाते हैं कि अक्सर वो ऊपर से क्रैक उतर ही जाता था। बस दफा लोगों के ऊपर दीन का ये एक वनीर होता है, बस एक ब्राउन चॉकलेट होती है हमारे ऊपर अल्लाह की मोहब्बत की, अंदर वही दुनिया का वाला दिल भरा हुआ है। तो जब हम कदर नहीं करते अल्लाह के, तो जाओ तुम रूठे हम छूटे, हमें कौन सी तुम्हारी परवाह है, जहां चाह नहीं वहां राह नहीं। तो ये चाहत जो है ना, ये कम हो जाए, ये बंदे की महरूमी होती है। और हम पता उस वक्त क्या सोच रहे होते हैं, मुश्किलात, मजबूरियां। असल में ये है ना, असल में ये, और वो जो असल में कहने के बाद जो जुमला बोलते हैं ना, उसको बोलते हुए खुद भी बंदे को शर्म आ रही होती है, ये क्या असल है। जब बंदे को किसी चीज की वैल्यू का एहसास होता है, हमें उसके बारे में सोचते भी नहीं है। आप देखिए, एक शख्स डायमंड खरीद रहा है, इतनी सी रिंग है ना कि जितनी छोटी होगी उतनी कीमती लगेगी, ऐसी है ना, तो उसकी इतनी बड़ी कीमत क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। और आर्टिफिशियल इतनी बड़ी अंगूठी को ले लेगा और वो चंद टकों में लेके खुश होगा, देखो थोड़े से पैसे में इतनी बड़ी अंगूठी ले ली। वो कोई कहता है ना उसको, जरा चलो इतनी बड़ी तुम्हें दे रहा हूं जितने की डायमंड के लिए, उससे आधी कीमत तो दे दो, तो कोई देता है। कहेगा छोड़ो बेकार बात है, इसकी क्या वैल्यू है। तो बस जैसे भी दिल में बात आती है उसको अपने ऊपर ले, ना किसी को सोचें, ना किसी के बारे में गौर करें, सिर्फ अपनी बात करके आखिरी बात कहती हूं कि मुझे अल्लाह की कितनी कदर है। अल्लाह ताला हमें अपनी कदर करने वाला बना दे।